ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। भारत ने बांग्लादेश से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों तथा उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक दायित्व बांग्लादेश सरकार का है। पिछले कुछ महीनों में वहां हिंदू मंदिरों और देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि संसद सार्थक चर्चा के लिए एक मंच है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य अनावश्यक हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं और नए सदस्यों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे। इस बीच सदन ने वक्फ संशोधन विधेयक समिति की रिपोर्ट पेश करने का समय बढ़ाकर अगले वर्ष बजट सत्र के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। श्री नड्डा ने कहा कि आप सरकार ने जानबूझकर 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों को इस महत्वपूर्ण बीमा से वंचित रखा। श्री नड्डा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के व्यापार सुगमता और विनियामक मामलों के पोर्टल का आज नई दिल्ली में शुभारंभ किया। ये पोर्टल केंद्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा व्यापार सुगमता पर की गई प्रमुख पहलों और इससे संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली ने व्यापार सुगमता में सुधार किया है। इस प्रणाली से विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों तथा विभागों को एक साथ लाने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति वैश्विक उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति वैश्विक स्तर पर गूंजती है। अपनी विदेश यात्राओं की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास और संस्कृति के प्रति ये अपार उत्साह अत्यंत प्रसन्नतादायक है। सरकार ने कहा कि उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बों के वितरण से हर साल लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। लोकसभा में लिखित उत्तर में ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने बताया कि इससे पूरे देश में प्रतिवर्ष 4800 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हो रही है। एलईडी बल्बों के प्रयोग से 4 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिली है। सरकार ने कहा है कि रेलवे ने तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की डिजाइनिंग और निर्माण का काम शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि इस रेलगाड़ी की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसकी निर्माण लागत लगभग 28 करोड़ रुपए प्रति रेलगाड़ी होगी। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा में भारत की 3 फिल्मों सहित 15 फिल्में शामिल हैं। 9 दिन के इस फिल्म महोत्सव में विभिन्न भाषाओं और शैलियों की करीब 180 फिल्में दिखाई गई हैं। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने इसराइल के डेनियल डोबोवेनको को और सिंधु ने ईरा शर्मा को हराया। मीराबा लुआंग मैसनाम, आयुष शेट्टी, उन्नति हुड्डा और श्रियांशी वाली शेट्टी ने भी सिंगल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।